الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم بزرگان محترم برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس آیت کریمہ میں جو مضمون وارد ہوا ہے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر کئی جگہوں پر یہ آیت آئی ہے اور اس جگہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی اس مضمون کو نقل کروایا گیا. وہ مضمون یہ ہے کہ ان دونوں نے حق تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے ہمارے رب، ہماری اولاد میں، اولاد ہی میں سے، ہماری ہی نسل میں سے ایک ایسا رسول بھیجیے، اپنا پیغامبر اور آپ کے پیغام کو پہنچانے والا بھیجیے جو آپ کی آیتیں انہیں پڑھ کر سنائے، کتاب اور سنت کی انہیں تعلیم دلائے اور ان کے اندرون میں پائی جانے والی جو برائیاں ہیں ان برائیوں کو وہ ختم کرے اور ان کو اچھی صفات سے وہ بدل دے. یہ مضمون اس آیت کریمہ میں وارد ہوا. یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمائی. کن کے لیے؟ اپنی بعد والی نسلوں کے لیے، خود اپنی اولاد کے لیے. اور یہ دعا اس وقت فرمائی جب ان لوگوں نے کعبہ کی، اللہ کے گھر کی، بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تھی. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارک مہدی للعالمین، انسانوں کے لیے جو گھر اللہ کی عبادت کرنے دنیا میں بنایا گیا، سب سے پہلا وہ گھر وہ ہے جس کو بکہ یعنی مکہ کہا جاتا ہے، کعبہ کہا جاتا ہے. مکہ کے اندر زمین کی ابتدا وہیں سے ہوئی کہ کائنات پر پانی کے، زمین پانی کے بلبلے کے اوپر ایک ٹکڑا اس کا نمودار ہوا، پھر وہیں سے اللہ پاک نے اس زمین کو پھیلا کر کے پورا بسیط فرما دیا، فرش اور فلور بنا دیا. تو انسانیت کی سہولت کے خاطر کہ اللہ کی عبادت کا انہیں ایک مقام میسر آئے، جو جگہ بنائی گئی اس دنیا کے اندر، سب سے پہلی جگہ وہ کعبہ ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے وہ قبلہ تھی، سب اس کی طرف رخ کر کے اللہ کی عبادت کو اور وہاں پر انجام دیا کرتے تھے. طوفان نوح میں قوم نوح پر جب عذاب آیا، جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال دعوت دی اور ان کی ایزاؤں کو سہتے ہوئے، ان کی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے، ہر قسم کی مصیبتوں کو جھیلتے ہوئے، جب 950 برس گزر گئے اور صرف گنتی کے چند لوگ ان کی دعوت پر ایمان لائے، تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، اس دھرتی پر کسی ایک کافر کو بھی زندہ نہیں باقی نہ رکھیے، ورنہ ان کی نسلوں سے اور ان کی پشتوں سے جو پیدا ہوں گے وہ بھی کافر ہی ہوں گے، وہ آپ کی عبادت گزار اور پرستش کرنے والے نہیں ہوں گے. اللہ پاک نے 950 سال کی دعوت کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے جو بد دعا کی تھی، اس بد دعا کو قبول کرتے ہوئے ان کو حکم دیا کشتی بنانے کا. کشتی بنائی گئی، اللہ پاک نے آسمان کے دہانوں کو بارش کے لیے کھول دیا. ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان چھلنی بن چکا ہے، اور چھلنی کے اندر کیا حال ہوتا ہے کہ پانی ٹھہرتا اور ٹکتا نہیں ہے. تو اس وقت جب بارش برس رہی تھی، اور بارش نہیں تھی، وہ قوم نوح پر اللہ کا عذاب تھا رسولوں کی، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کی وجہ سے، تو وہ چھلنی بن گیا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا. اللہ پاک نے دنیا کے اندر جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کا انتظام فرشتوں کے سپرد کر رکھا ہے. روزی کسی کے ذمے ہے، بارش کسی کے ذمے ہے، بچوں معصوموں کی مدد کسی کے ذمے ہے، انسانوں کی عام حفاظت کسی فرشتے کے ذمے ہے، موت کا کوئی ذمہ دار ہے، اللہ کے پیغامات کو دنیا کے اندر پہنچانے کا کوئی ذمہ دار ہے. ایسے ہی بارش کا جو فرشتہ تھا، روایات میں آتا ہے بعض کہ اللہ پاک نے اس کے ہاتھ سے لگامیں لے لی تھی اور ان کو بے لگام چھوڑ دیا تھا، تو پھر وہ بارش برسی تھی اور ایسی برسی تھی کہ ساری کی ساری قوم ڈوب گئی تھی. اور صرف بارش آسمان سے برسی نہیں تھی، بلکہ زمین سے چشمے پانی کے ابلنے لگے تھے. یہاں تک کہ جو پانی کے سوکھنے کے مقامات ہیں، यानी तन्नूर, जहां आग जलती है, जहां अंगारे और शोले भड़कते हैं, वहां तक से अल्लाह ने पानी को जारी करके उबाल करके बता दिया, अपने कुदरत के करिश्मे दिखा दिए। जब ये हालत हो गई और ऊपर से पानी बरस रहा है, नीचे से चश्मे उबल रहे हैं, ऐसी हालत में किसी को जाए पना नहीं है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी जो कश्ती बनाई थी इंसानियत के जो उन पर ईमान लाने वाले हैं उनकी हिफाजत के लिए अल्लाह के हुक्म से, तो उस कश्ती में ईमान वाले सवार हो गए। उसी दौरान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का अपने बेटे के साथ में मुकालमा पेश आया कि उनका जो बेटा था वो भी काफिर था। हज़रत नूह ने अपनी कश्ती में सवार होते हुए उसको देखा कि वो उनकी कश्ती में आने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि इरकब माना, आ जाओ हमारे साथ। उसने कहा कि नहीं, सआवी इला जबली यासिमुनी मिनल मा, मैं तो पहाड़ का सहारा लूंगा, मैं पहाड़ों पर चढ़ जाऊंगा। और वो क्या, सारी की सारी कौम जो नाफरमान थी, बस इसको एक मामूली सा पानी समझ करके अपने आप को किसी ऊंची जगह में महफूज कर लेने से समझ बैठे थे कि अल्लाह के अजाब से बच जाएंगे। लेकिन सब ने अपने अपने जो सहारे, अपनी अपनी जो कोशिशें हो सकती थी वो कर डाली। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने भी किया, लेकिन हुआ क्या, ये मुकालमा दोनों के बीच हो ही रहा था, वो पहाड़ का सहारा लेने ही वाला था, किसी ऊंची जगह पर वो चढ़ने ही वाला था कि हाल अबई नहुमल मौज, दोनों के बीच एक मौज हायल हो गई और उसने आकर के उनके बेटों को भी खुद उनकी निगाहों के और नजरों के सामने डुबा दिया, वो भी अल्लाह के अजाब का शिकार हो गया। अगरज तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जो तूफान आया, जो तूफान नूह से मशहूर है, और उसी तूफान की जद में आकर सारी की सारी कौम को अल्लाह ने नाफरमानी की सजा में तबाह कर डाला था, उसमें बैतुल्लाह की इमारत और बैतुल्लाह की दीवारें भी मुनहदिम हो गई थी, अलबत्ता बुनियादें बाकी थी। अब वो बुनियादों की दोबारा जो तजदीद हुई है, जो तश्कील हुई है और तामीर हुई है, वो हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए से हुई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले मक्का के अंदर, मक्का के बाशिंदे नहीं थे, वो बाबुल और शाम के रहने वाले थे। वहाँ से अल्लाह पाक ने उनको उठाया, जब पैगंबरी दी तो उनका मुकाबला भी हुआ उनके खुद अपने बाप से, उनका मुकाबला हुआ उनकी कौम से, उनका मुकाबला हुआ बादशाह के वक्त से, और उनका मुकाबला हुआ दूसरे और अपने रिश्तेदारों से, और सारी की सारी यानी उनके सिवा बाकी सारी लोग सारे लोगों से, बीवी और बच्चे के सिवा, बच्चा तो उस वक्त था नहीं, बीवी के सिवा उनका कोई ताबे और उनकी बात का मानने वाला न था, सारे के सारे अपने और पराए, करीबी और दूर के मर्द और औरत, बच्चे और बूढ़े, सब के सब उनके मुखालिफ थे, सब के सब उनके दुश्मन थे। जब अल्लाह पाक ने वहाँ उनको का इम्तिहान लिया और बुतों को उनके हाथों पाश पाश करवाया और तोड़वा दिया, और फिर उसकी पादाश में लोगों ने सजा तजवीज करके उनको आग में डाला, अल्लाह ने उस आग को गुलजार और बहिश्त बना दिया, एक उनके लिए बाग बना दिया, गुलशन, और उनके लिए एक पार्क जैसा माहौल वहाँ फिजा पैदा कर दी, वहाँ से उनको नजात मिली। तो अब वो अपने बाप को समझाने के लिए आए और कहने लगे, या अबति ला ताबुदि शैतान, इन्ना शैतान काना लिर्रहमान आसिया, कि शैतान की परस्तिश करते हैं आप इन जीतों बुतों को जो पूजते हैं, ये बुतों को पूजना दर हकीकत शैतान को पूजना है, इसलिए कि इसके पूजने का हुक्म दर हकीकत उसने इंसानों के दिलों को सुझाया है कि इस तरीके से अल्लाह से बंदों को गाफिल किया जा सकता है। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ तरीक़ों से समझाया, इन्नी या अबति इन्नी अखाफ अन यमस्सका अज़ाबुन मिनर रहमान फतकून लिश्शैतान वलिया क़ाला अराग़िबुन अंता अन आलिहती या इब्राहिम। जब तरह तरह से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को समझाया तो उन्होंने धमकी दी, तुम मुझे मेरे माबूदों से बेजार कर रहे हो, ये काम तो होने वाला नहीं है, मैं कभी अपने माबूदों को छोड़ दूँ ये तो हो नहीं सकता, हाँ अगर तुम दोबारा इस किस्म की कोशिश करोगे तो फिर हम तुम्हें संसार कर देंगे, पत्थरों से मार मार कर तुम्हें हलाक कर देंगे। अब हज़रत इब्राहिम जो कोशिश अपनी हद तक कर सकते थे उन्होंने कर दी। अब आखिर में जब कुछ हुआ नहीं, नतीजा निकला नहीं, बल्कि वो खुद इनसे बरसरे पैकार हो गए, इनके दुश्मन बन गए, तो कहा सलामुन अलैक सअस्तग़फिरुका रब्बी इन्नहू काना बी हफिया, कि ठीक है सलाम रुख्सत हो, अब आपसे अलविदा कहता हूँ और यहाँ से जाता हूँ। वहाँ से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को लेकर के चले। उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिल्कुल बिलखते हुए छोटे छोटे से मासूम बच्चे थे, बिल्कुल चंद महीनों के जो थे। अब यहाँ से हुक्म हुआ निकलने का, ये नहीं बताया गया कि जाना कहाँ है, बस बताया गया कि निकलो यहाँ से, तो उस बस्ती को छोड़ करके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम चल पड़े। जहाँ जहाँ कुछ आबादी आगे आती जाती थी, हजरत इब्राहिम हजरत जिब्रील से जो साथ थे पूछते थे कि क्या यहाँ रहने का क़ियाम का हुक्म है, और मतलब कि नहीं यहाँ नहीं है। आगे जैसे जैसे कुछ आबादी वाला हिस्सा कुछ रौनक वाला हिस्सा और कुछ इंसान की इंसानों की बस्तियों वाला हिस्सा आता है। तो इब्राहिम इस सवाल को दोहराया करते और जवाब वही मिलता कि नहीं, यहाँ पर हुक्म नहीं। आखिरकार जब ऐसी जगह पहुंचे जहां पर ना चिड़िया चूँ और ना कौवा कायें करता है, जहां पर कोई दरख्त का पत्ता तक उगता नहीं है, जहां रेत के जर्रों के सिवा पानी का कोई कतरा तक नहीं है और ना आसमान से बरसने के कोई इम्कान है, ना आसपास में दरख्तों का साया तक मुयसर है, ना इंसानों में से कोई मानूस हम ख्याल इंसान या नामानूस ना हम ख्याल इंसान ही वहां बसता है, ऐसी जगह पर जब आए जिसको कुरान करीम के अंदर वादी गैर दी ज़रा, जहाँ उगने की सलाहियत नहीं है, जहाँ नबातात की एग्रीकल्चर का निज़ाम को जहाँ कायम किया ही नहीं जा सकता वहाँ की रेतीली ज़मीन की वजह से, ऐसी जगह पर जब वहाँ पहुँचे तो फिर अल्लाह का हुक्म हुआ कि यहाँ रहो, यहाँ अब क़ियाम करना है। अच्छा, पहुँचा दिया, अपनी बीवी को छोड़ दिया और बच्चे जो मासूम सा बच्चा चंद महीनों का है उसको भी वहाँ पर छोड़ दिया, तो अब हुक्म हुआ कि तुम यहाँ से चले जाओ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बीवी बच्चे को छोड़ करके वहाँ से निकल रहे हैं और बीवी को बताया तक नहीं, हज़रत सारा अलैहिस्सलाम हाजरा अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह अन्हा को कि अल्लाह का हुक्म है इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अभी भी ये पता नहीं है कि जाना कहाँ है, सिर्फ यहाँ से निकलने का हुक्म है। और चूंकि बीवी की तरफ से हो सकता है कि किसी कदर मुखालफत हो जाए, रुकने की फरमाइश हो जाए, किसी तरह के हीले बहाने पेश आ जाए, तो बताया तक नहीं। खुद हजरत हाजरा ने पूछा कि आप हमें छोड़कर जा कहाँ रहे हैं, मैं औरत जात हूँ, मेरे साथ मासूम बच्चा है, आसपास में कोई हम ख्याल नहीं है, कोई मानूस इंसान नहीं है, यहाँ खाने पीने का कोई सामान मुयसर नहीं है, दाने पानी तक का कोई इंतज़ाम नहीं है, तो आप हमें यहाँ से यहाँ छोड़ कर जा कहाँ रहे हैं। एक आवाज़ दी, दो आवाज़ दी, उधर से हज़रत इब्राहिम का कोई जवाब नहीं आया। आखिर में वो भी तो नबी की बीवी थी, उन्होंने खुद पूछा क्या अल्लाह पाक के हुक्म से आप हमें छोड़ करके जा रहे हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ने फरमाया कि हाँ, अल्लाह ही के हुक्म से मैं तुम्हें यहाँ छोड़ कर जा रहा हूँ। तब हज़रत हाजरा ने फिर जवाब दिया कि जब अल्लाह के हुक्म से छोड़ कर आप हमें जा रहे हैं तो फिर अल्लाह पाक के ज़ाय करने का सवाल नहीं, अगर अल्लाह ने इस कुर्बानी के देने का और दिलवाने का हुक्म दिया है तो फिर वो इसका अजर देने के लिए भी तैयार है। जब वो हमें इस दुनिया के अंदर नवाजना चाहते हैं, नवाज देने का ये ज़रिया है कि पहले वो कुर्बानी और कीमत और मुआवजा मांग रहे हैं और आप वो मुआवजा अदा कर रहे हैं जिसके बाद हमें इसका अजर और मुआवजा मिलने ही वाला है, इसकी कीमत हमें मिलने वाली है, इसका असर हम दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर देखने वाले हैं। अलगरत हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाँ से चल दिए। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ अरसे के बाद उस वक्त आए जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बड़े हो चुके थे और अपने बाप के साथ चलने फिरने के, बाहर जाने के और दौड़ने के काबिल हो चुके थे, तो दोबारा आए और फिर वो वाकया पेश आया कुर्बानी का। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ख्वाब में ज़बह करने का किस्सा देखा तो उन्हें लेकर के चल पड़े कि अल्लाह के हुक्म को जो बेटे की कुर्बानी का, बेटे के गले पर छुरी फेरने का हुक्म हो तो उसको भी पूरा करेंगे। आखिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो ख्वाब को भी और उस हुक्म को भी जो ख्वाब के अंदर दिखाया गया था पूरा करके दिखाया। हर तरह के इम्तिहान में जब वो कामयाब हुए तो अल्लाह पाक ने खुद उसका इकरार फरमाया, उसको बयान फरमाया कुरान करीम के अंदर, वइद इब्तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फातम्महुन, कि इब्राहिम को उनके रब ने आजमाया चंद आजमाइशों से, चंद इम्तिहानों से, चंद मुसीबतों से, और उनको आजमाइशों में डाल करके तो सारे के सारे आजमाइशों में वो कामयाब निकले। वह इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, और कैसे निकले, ऐसे बावफा निकले कि उनकी वफ़ा का इकरार मैं खुद करता हूँ और रहती दुनिया तक के इंसानों को बताता हूँ कि वफादारी अगर करनी है तो इब्राहिम के जैसे करनी है कि बीवियों की इसके अंदर रियायत नहीं है, यानी अल्लाह के हुक्म पर कुर्बानी देने का जज्बा है, बीवियों तक को कुर्बान करना, उनके जज्बात तक को कुर्बान करना, औलाद तक को कुर्बान कर देना, अल्लाह के हर हुक्म को पूरा करने की फिक्र रखना, ये जब सिफत आई तो अल्लाह पाक ने, और जब इन इम्तिहानात के अंदर कामयाबी नसीब हुई तो सारे इंसानों को अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान करके बतला दिया। अलगरज जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और बड़े हुए और अपने वालिद का हाथ बटाने के काबिल हुए तो अब हुक्म हुआ कि बैतुल्लाह की तामीर करें, बैतुल्लाह की बुनियादें जो बाकी थी लेकिन जिसकी इमारत तूफान नूह में मुनहदिम हो चुकी थी, अब हुक्म हुआ कि उसको उन्हीं बुनियादों पर कायम रखते हुए उसकी तामीर की जाए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल को लेकर के ये हुक्म पूरा करना शुरू कर दिया। बाप बेटे पत्थरों को पहाड़ों से मुंतकिल करके तोड़ करके ले आते थे और फिर अल्लाह का घर बनाते थे। जब बैतुल्लाह की तामीर मुकम्मल हो गई तो फिर हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माईल बाप और बेटे ने मिलकर यह दुआ की थी। बहुत सारी दुआएँ थी, उसमें से एक दुआ ये भी थी। दो तरह की दुआएं उन्होंने अपनी औलाद और अपनी नस्ल के लिए की, एक दुनियावी नफा की दुआएं हैं और एक उखरवी नफा की दुआएं। उन्होंने सिर्फ यही नहीं कहा कि इनको ईमान देना, इनको दुनिया से महरूम रखना, बल्कि ये फरमाया कि ऐ अल्लाह,
दुनिया भर के अंदर आपकी नियामतें जिस किस्म की हैं उन सारी नियामतों से इनको नवाजिए। युजबा इलैहि थमरातु कुल्लि शैइ रिज़्क़न मिन लदुन्ना वलाकिन्ना अक्सरहुम ला यअलमून। और उन्हीं की उनकी इस दुआ की बरकत से आज उस वादी गैरजी ज़रा में जहाँ कोई एक पत्ता तक नहीं उगता है अल्लाह के बरकत अल्लाह के फजल से अल्लाह की नियामत से और उनकी इस दुआ की बरकत से हर किस्म की नियामतें मुयसर हैं। यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का असर है। तो उन्होंने दुनियावी नफ़ा को भी अपनी औलाद के लिए मांगा और उखरवी नफ़ा भी मांगा। उखरवी नफ़ा की शक्ल यही थी कि ये दुआ फरमाई, रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाती, कि उनमें एक रसूल को भेजिए जो आपकी तिलावत आपकी आयतों की तिलावत करे, क़ुरान की और सुन्नत की तालीम दे और उनके बुरे अखलाक को अच्छे औसाफ़ से बदले। उनके औसाफ़ के अंदर जो बुराइयाँ आ गई हैं अल्लाह उनको इन बुराइयों से इन बुरी सिफतों से नजात दीजिए। विज़क्की हिम का मतलब ये है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस दुआ के अंदर जो ज़ोर दिया है वह रसूल की रिसालत का है, उसके तालीमात की आयात की तिलावत का है, किताब व हिकमत की तालीम का है और तज़किये का है। ये तीनों चीज़ों के अहतमाम का हुक्म और अहतमाम का सबक और अहतमाम का अमर इस आयत से और इनकी इस दुआ से मिलता है। इंसानों के अंदर दुआ मांगने के एतबार से तीन किस्में हैं, जो सिर्फ़ दुनिया को मांगते हैं, दूसरे किस्म वो है जो सिर्फ आखिरत को मांगते हैं, और तीसरे किस्म वो है जो दुनिया और आखिरत दोनों की भलाइयों को मांगते हैं। पहली जो किस्म है यानी सिर्फ दुनिया की भलाइयों को मांगना, इसके बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया ला खलाक़ लहुम फिल आखिरा, कि जो दुनिया को मांगते हैं आखिरत के जो किसी भी हिस्से में तलबगार नहीं हैं, हम उनको फिर आखिरत के किसी हिस्से से नवाजेंगे भी नहीं। जो आखिरत को मांगते हैं उनमें समझदारों की ज़रूरत है। अगर वाकई किसी की ये हालत है कि अगर उसको दुनिया ना भी मिले और सिर्फ आखिरत की नियमत उसे नवाज दी जाए, दीन की नियमत उसे मिल जाए, ईमान और उसकी तालीमात पर अमल उसके लिए आसान कर दिया जाए, तो उसके लिए अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहना आसान हो जाए, तो ऐसे के लिए इजाज़त है कि वो सिर्फ अल्लाह से आखिरत मांगे और दुनिया ना मांगे। लेकिन ऐसों की तादाद इस दुनिया में इतनी भी नहीं है कि उंगलियों पर उसको शुमार किया जा सके, बहुत ही कम है, बहुत ही थोड़ी है। तीसरे किस्म वो है जो दुनिया और आखिरत की भलाइयों को और खैर को मांगा करते हैं, और इसी को अल्लाह पाक ने इस उम्मत के लिए मशरूअ भी फरमाया, जायज़ भी फरमाया कि उम्मत को तालीम भी दी कि तुम इसी तरह की दुआएं मांगा करो। और वो वही जामे दुआ है जो कुरान करीम के अंदर वारिद हुई है और तकरीबन हर मुसलमान को याद होती है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन्नार, कि ऐ अल्लाह हमें इस दुनिया के अंदर भी हसना से नवाजिए और आखिरत के अंदर भी हसना से नवाजिए, यानी दुनिया भी खैर नसीब फरमाइए, भलाई नसीब फरमाइए, और उखरवी खैर उखरवी भलाई भी नसीब फरमाइए। यहाँ पर दीन और दुनिया दोनों के नफ़ा को मांगने के साथ साथ एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो है दोनों का जब आपस में टकराव होता है तो किसको तरजीह देना चाहिए। इम्तिहान जब होता है तो आजमाइश में खरे उतरने के लिए करना क्या चाहिए, तो ऐसे मौक़ों के लिए नबवी तालीम सहारा देती है, ऐसे मौक़ों के लिए इस किस्म की आयतें और वाक़ियात सबक देती हैं कि ऐसे मौक़ों पर दुनिया की कुर्बानी देकर आखिरत को तरजीह देना ये अंबिया की तालीम है, ये उनका तरीक़ेकार है और ये मुसलमानों के पूरे मुसलमान कहलाने का ज़रिया है। अगर ये चीज़ हासिल हो गई तो फिर मुसलमान वाकई मुसलमान कहलाने का मुस्तहिक़ होगा, अगर ये चीज़ हासिल नहीं होगी तो जिस दर्जे इस नियमत के अंदर कमी होगी, जिस दर्जे इस मेहनत के अंदर कमी होगी, उसी दर्जे में वो ईमान से और इस्लाम से दूर होगा, और जिस दर्जे वो इससे करीब होगा उसी कदर वो मुसलमान कहलाने का मुस्तहिक होगा। होता यह है कि अल्लाह पाक ने हमसे ईमान के जिस मेयार का मुतालबा किया, जिस मकदार का मुतालबा किया, उस मकदार में और इस मेयार में हम अल्लाह के सामने अपने ईमान को और अपने अमाल को पेश नहीं करते। वैसे भी हम अल्लाह के हिसाब का ईमान और अमल पेश नहीं कर सकते, लेकिन उसकी कोशिश भी नहीं करते। अफसोस की बात यह है, कोशिश अगर की जाएगी तो नतीजा अल्लाह के हवाले है, नतीजा अल्लाह के सुपुर्द है, लेकिन कोशिशों का करना ये हमारा काम है। अल्लाह पाक हम सबों के लिए इस इब्राहिमी सुन्नत पर अमल की तौफीक अता फरमाए कि अपनी औलादों के लिए एहतमाम दीन और दुनिया दोनों के नफ़ा का होना चाहिए। ऐसा ना हो कि दुनिया की भलाई के खातिर दीन को कुर्बान कर दिया जाए और दुनिया की कमाई के खातिर दीन को اس کے حوالے کر دیا جائے, اس کے مٹنے کی فکر نہ کیا جائے, اور زندگیوں کے اندر دین کے آنے کی فکر اور اہتمام نہ کیا جائے. تعلیم دلانے کے ساتھ ساتھ دین زندگیوں میں آنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے صحبت کی, اولیاء اللہ کے ساتھ میں اٹھنے اور بیٹھنے کی, ان سے دین کو سیکھنے کی. کیونکہ زبانی طور پر علم کا سیکھنا اور چیز ہے, اور اعمال کو دیکھ کر دین کا سیکھنا اور چیز ہے. زبانی طور پر جو علم حاصل ہوتا ہے وہ بھی علم ہے, لیکن عملی طور پر کسی کو دیکھ کر کے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ زیادہ ذہن نشین ہوتا ہے. اللہ پاک قرآن کریم کو بھی اتار سکتے تھے نبی کے بغیر, آسمانی کتابوں کو بھی اتار سکتے تھے انبیاء کے بغیر, لیکن کوئی رسول دنیا کے اندر کتاب کے بغیر تو آیا, ایسی مثالیں بہت ہیں, لیکن کوئی کتاب کسی نبی کے بغیر آئی ہو ایسی مثالیں نہیں ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ کتابیں اس کی تفہیم کے لیے, اس کے سمجھانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے اس کے سمجھانے والوں کی, اور وہ ہوتے ہیں براہ راست سمجھانے والے انبیاء اور ان کے وارثین علماء. اسی لیے قدر کی ضرورت ہے ان لوگوں کی, اور اہتمام کی ضرورت ہے ان کی صحبت کی. حق تعالی ہم سبوں کو ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.